लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन कल्याण तथा मानव केंद्रित समाज के निर्माण में योगदान प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 75वें भजन के प्रथम दो पद। विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इसी भजन की व्याख्या आरंभ की थी। इसमें भजनकार ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार कर उन्हें संसार का एकमात्र न्यायकर्ता घोषित करता है तथा उनके अपूर्व कार्यों के लिए उनकी महिमा का बखान करता है। ईश्वर से वह आर्त निवेदन करता है कि जिस सृष्टि की उन्होंने रचना की उसका वे विनाश न होने दें तथा उस पर निवास करने वाले समस्त लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ का 75वां भजन प्रभु ईश्वर की महिमा में रचा गया गीत है। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति करने वाला प्रशस्ति गान है। ईश्वर के अपूर्व कार्यों का दीदार कर लेने के बाद भजनकार उनमें अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है। उसका विश्वास अटल था कि कष्टों और संकटों से बचाने वाले एकमात्र ईश्वर ही हैं और इसीलिए मनुष्य सदैव उनसे प्रार्थना करे तथा उनके प्रति धन्यवाद अर्पित किया करे। भजन में आगे प्रभु ईश्वर के वचनों को इन शब्दों में भजनकार व्यक्त करता है। निर्धारित समय आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ। ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो, क्योंकि न तो पूर्व से न पश्चिम से और न मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। श्रोताओ, इन शब्दों से भजनकार एक बार फिर कहता है कि उद्धारकर्ता केवल प्रभु ईश्वर हैं और प्रभु ही निर्धारित समय आने पर भक्त का उद्धार करते हैं। संकट कब टलेगा और कठिनाइयां कब समाप्त होंगी, कब पार होंगी, यह निर्णय मनुष्य नहीं ले सकता, क्योंकि केवल ईश्वर न्याय करता है। प्रभु ही एकमात्र उद्धार करता है। वे मनुष्य को संकट से उबारने वाले हैं। अस्तु, मनुष्य इस भ्रम में कदापि न पड़े कि वह अपने जीवन का संचालन खुद कर सकता है। इस भ्रम में न पड़े कि वह पीड़ाओं, रोगों, भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं से भरे विश्व रूपी भंवर से स्वयं निकलने में समर्थ है। वस्तुतः भजन के 6 से लेकर 8 तक के पदों में मनुष्यों से कहा गया है कि वे अपने आप पर घमंड न करें, इस बात पर गर्व न करें कि वे किसी की मदद कर सकते हैं अथवा किसी को रोजगार प्रदान कर सकते हैं, किसी को आवास प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ मनुष्य कर सकने में समर्थ है वह सब ईश कृपा का परिणाम है। यह न तो जादू टोने पर, न ही उसके सौभाग्यशाली नक्षत्रों पर और न ही विज्ञान और तकनीकी की प्रगति द्वारा अर्पित माध्यमों पर निर्भर रहता है। भजनकार लोगों में इस तथ्य की चेतना जागृत करता है कि ईश्वर की कृपा और ईश्वर की अनुकंपा के बिना मनुष्य स्वतः कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। मनुष्य को प्रतिपल ईश्वर की जरूरत है, इसलिए मनुष्य ईश्वर में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करे, उनकी अनुकंपा की याचना करे और ईश नियमों पर चलता हुआ प्रभु ईश्वर का गुणगान करे और उनकी ही महिमा का बखान किया करे। पिछहत्तरवें भजन के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न मरुभूमि से उद्धार संभव है। श्रोताओ, सच तो यह है कि जेरूसलम के दक्षिण पूर्व स्थित यहूदिया की मरुभूमि उस युग में जंगली जानवरों और सांपों, राक्षसों और जिन्नों का सबब बनी हुई थी। वस्तुतः यह 74वें भजन में वर्णित कोलाहल का प्रतिनिधित्व करती है। भजनकार कहता है कि यदि मनुष्य मरुभूमि पर चिंतन करेगा तो अवश्य ही उसका साक्षात्कार मानवीय अस्तित्व के भयावह पक्ष से होगा। यहाँ स्मरण दिलाना रुचिकर होगा कि संत योहन बपतिस्ता और स्वयं प्रभु येसु ख्रीस्त ने भी इसी प्रकार की मरुभूमि अथवा उजाड़ प्रदेशों में रहकर मनन चिंतन किया था। और 75वें भजन के 8वें पद में निहित ऊंचा उठाना शब्दावली से तात्पर्य राजा के कृत्य से है, शासनकर्ता के कृत्य से है, जिस पर यह शाही फैसला निर्भर रहा करता था कि किसे मार डाला जाना और किसे ऊपर उठाया जाना था। ऐसा ही है ईश्वरीय न्याय। न्यायकर्ता प्रभु ईश्वर ही जानते हैं कि किसे नीचा दिखाना है और किसे ऊपर उठाना अथवा किसे क्षमा प्रदान कर नवीकृत करना है। आगे 75वें भजन के 9वें और 10वें पदों में भजनकार इसी विचार को जारी रखते हुए कहता है, तिक्त उफंती मदरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उड़ेलता है, पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलछट तक पीना है। और फिर आगे 10वें पद में, मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा, मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा, मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा। श्रोताओ, यहां यह ध्यान रखना हितकर होगा कि भजनकार एक विश्वासी व्यक्ति है। वह अपने पैरों पर खड़ा एक धर्म परायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। जिसने ईश्वरीय क्षमा का सुखद अनुभव प्राप्त किया है। वह एक नवीकृत, ताजगी से भरा और आनंदमय व्यक्ति है, और इसी के फलस्वरूप वह साहसपूर्वक कहता है, मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा, मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा, मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा, किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा।
Yeah.